लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने जीवन में किस बात पर गौरव करते हैं? वे कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने में, अपने समाज में, आस पड़ोस और अपनों के बीच सम्मानित होने का अनुभव करते हैं? आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो समाज में प्रतिष्ठा, आदर और सम्मान हमें हमारे ओहदे के द्वारा मिलता है। हम कौन से पद में पदासीन हैं? हमारी शैक्षणिक डिग्री क्या है? हमारे आशियाने कैसे हैं? हमारे पास कितना धन दौलत और किस प्रकार की सवारी है? हमारे लिए समाज में सम्मान प्राप्ति के साधन बनते हैं। उपयुक्त चीजों के होने से लोग हमें सहज ही अपने बीच पहचान प्रदान करते और समाज में हमारी पूछ होती है। श्रोताओं, 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए दुनिया की ऐसी ही परिस्थिति में यीशु के द्वारा अपने शिष्यों का समाज में भेजे जाने की बात कहता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने व्यक्तिगत मनोभावों की परख करें। दुनिया में लोगों के समक्ष अपने को ले जाने में हम किस तरह से पेश आते हैं? वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेकर हम अपने को अपने समुदाय में प्रस्तुत करते हैं? क्या लोगों के मध्य हमारा जाना उनके जीवन में एक तरह से परिवर्तन और खुशी की बयार लाती है?
प्रभु ने अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांवों में वह स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर से मिलने वाली आनंद, खुशी और शांति से भर दे, जिससे हम उन ईश्वरीय वरदानों को दूसरों के संग साझा कर सकें जो आज की परिस्थिति में लोगों के लिए सच्चे अर्थ में अति आवश्यक हैं। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ यरूशलेम के लिए ईश्वर के आनंद का संदेश घोषित करने की बात कहता है। ईश्वर स्वयं यरूशलेम को सांत्वना प्रदान करने की बात कहते हैं। वे यरूशलेम में शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह प्रवाहित करने की बात कहते हैं। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। हम नबी इसाइयास के इन वचनों में याहवे का अपनी चुनी हुई प्रजा के प्रति आगाध प्रेम को प्रकट होता पाते हैं। नबी इसाइयास के वचनों का संदर्भ बाबिलोन निर्वासन है, जहां याहवे अपनी दुखित प्रजा के लिए आनंद और सांत्वना का संदेश प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे लिए इस सत्यता को प्रकट करता है कि ईश्वर किस तरह हमारे जीवन के दुखों को हमसे दूर करने के लिए स्वयं हमारे बीच आते हैं। वे अपनी प्रजा का परित्याग कभी नहीं करते हैं। ईश्वर अपनी प्रजा को उनके गिरे हुए क्षणों से ऊपर उठाने आते और उन्हें अपने प्रेम और सांत्वना प्रदान करते हैं। श्रोताओं, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए संत पौलुस का क्रूस पर गौरव करने की बात प्रस्तुत करता है। क्रूस के कारण वे दुनिया के लिए और दुनिया उनके लिए मरी जान पड़ती है। संत पौलुस हमें कहते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर में एक नई सृष्टि बनना है। क्रूस पर गौरव करने का अर्थ हमारे लिए अपने जीवन के क्रूस अर्थात जीवन की दुख तकलीफों को सहर्ष स्वीकारना है, क्योंकि जीवन के मुक्तिदाता ने हमारे लिए सर्वप्रथम ऐसा किया। यह हमारे लिए उस ईश्वर पर विश्वास करने का निमंत्रण है जो अपनी कमजोरियों में शक्तिशाली है, जो अपनी नम्रता और दीनता में बलवान और सामर्थ्यवान है। हमारे ईश्वर शक्तिशाली होते हुए भी अपनी शक्ति की नुमाइश कभी नहीं करते हैं। यीशु ख्रिस्त के ये मनोभाव संसार के मनोभावों के एकदम विपरीत है। संसार दुखों से दूर भागती है, वहीं यीशु ख्रिस्त दुखों का आलिंगन करते हैं। दुनिया वाहवाही और चकाचौंध परिस्थितियों की चाह रखती है, वहीं यीशु अपने में उन परिस्थितियों से दूर रहते हैं। दुनिया शत्रुओं से बैर करती, लेकिन यीशु अपने शत्रुओं को माफ करती और उन्हें गले लगाते हैं। संत पौलुस यीशु ख्रिस्त के उन्हीं मनोभावों को अपने में धारण करते हुए कहते हैं, संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में मर गई है। श्रोताओं, यीशु के मनोभावों को अपने जीवन में धारण करना हमें उनमें एक नई सृष्टि बनाता है, जिसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हमने 72 अन्य शिष्यों को यीशु के द्वारा प्रेरिताई हेतु भेजे जाने के बारे में सुना। वे उन्हें अपने स्थान में जहां वे जाने वाले थे अपने कार्यों को पूरा करने भेजते हैं। यह हम में से हर एक को भी ख्रिस्त की प्रेरिताई का अंग बनाता है, जहां हम ख्रिस्त की शांति को दुनिया में प्रसारित करने को भेजे जाते हैं। इस भेजे जाने में यीशु हमें दुनिया की चुनौती भरी स्थिति से वाकिफ कराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इस भांति यह भेजा जाना दुनिया के मनोभावों से हमें ऊपर उठने की मांग करती है। दुनिया की चुनौतियों का सही रूप में सामना करना हमें यीशु ख्रिस्त के मनोभावों को धारण करने का आह्वान करता है। हम इस चुनौती भरी दुनिया में उनके कार्यों को पूरा करने के योग्य केवल तब होते हैं जब हम स्वयं को सदैव उनके संग संयुक्त रखते हैं और अपनी सारी जरूरतों के लिए ईश्वर पर आधारित होते हैं। जीवनदाता ईश्वर पर जो हमें अपने कार्यों को पूरा करने हेतु भेजते हैं, हमारा आत्मनिर्भर होना हमारे जीवन को गौरवमय बनाता है। छोटी से छोटी बातों के लिए ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनकी महिमा की कामना करना हमारे लिए महिमा और गौरव का कारण बनती है, जिसकी चाह सारी दुनिया करती है। श्रोताओं, ईश्वर स्वयं हमारी मेहनत के लिए हमें अपनी कृपा रूपी मेहनताना निरंतर प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए पर्याप्त है। आइए हम यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि हम दुनिया में अपने भेजे जाने के अर्थ को समझ सकें, जिससे हम उनकी दाखबारी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर सकें।
मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने उत्तरी यूरोप के युवाओं एवं शिक्षकों का स्वागत किया तथा उनसे ईश्वर के आह्वान को सुनने और शिष्यत्व की अपनी यात्रा जारी रखने का आग्रह किया। शनिवार सुबह को पोप लियो 14वें ने डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड के तीर्थयात्रियों का वैटिकन में स्वागत किया, जो जुबली वर्ष के लिए रोम की तीर्थयात्रा पर हैं। तीर्थयात्रियों में कैथोलिक स्कूलों के 65 शिक्षक एवं कोपेनहेगन धर्म प्रांत के 52 युवा शामिल थे। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, मैं इस जयंती वर्ष के दौरान रोम की आपकी तीर्थयात्रा के अवसर पर आप सभी का खुशी से स्वागत करता हूं। आप विभिन्न देशों के अनगिनत तीर्थयात्रियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो सदियों से रोम अनंत शहर की तीर्थयात्रा करते हैं। वास्तव में रोम हमेशा से ख्रिस्तियों के लिए एक विशेष घर रहा है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पौलुस ने अपनी शहादत के माध्यम से यीशु के प्रति अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। संत पापा ने कहा कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मैं यहां आपकी उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि विभिन्न पौत्र स्थलों का दौरा करके आप संतों एवं शहीदों द्वारा मसीह का अनुसरण करने के उदाहरण से प्रेरणा एवं आशा प्राप्त कर सकें। उसके बाद तीर्थयात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पोप ने कहा, तीर्थयात्रा हमारे विश्वासी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हमें हमारे घरों और हमारी दिनचर्या से दूर ले जाती है और हमें ईश्वर से और गहराई से मिलने के लिए समय एवं स्थान देती है। ऐसे क्षण हमें बढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से पौत्र आत्मा हमें धीरे धीरे यीशु के मन और हृदय के और अधिक करीब होने के लिए तैयार करती है। संत पापा ने सभी तीर्थयात्रियों को अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी और कहा, इस अवसर का उपयोग सुनने और प्रार्थना करने के लिए करें, ताकि आप अपने दिलों की गहराई में ईश्वर की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे। इस बात पर गौर करते हुए कि आजकल सुनने की क्षमता खोती जा रही है, पोप ने कहा, क्योंकि हम संगीत सुनते और हमारे कान लगातार विभिन्न प्रकार के डिजिटल सामग्रियों से भरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने दिल की बात सुनना भूल जाते हैं, जबकि ईश्वर हमारे दिल में हमसे बात करते हैं। शिक्षकों को संबोधित करते हुए पोप ने उन्हें आदर्श बनने की सलाह दी, क्योंकि युवा उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं, जीवन के आदर्श एवं विश्वास के आदर्श। उन्होंने कहा, वे आपसे खास तौर पर इस बात पर नजर रखते हैं कि आप कैसे सिखाते और कैसे जीते हैं। उन्होंने उन्हें यीशु के साथ संबंध गहरा करने का प्रोत्साहन दिया, जो हमें प्रामाणिक शिक्षा के सभी तरीके प्रदान करते हैं। जिससे कि वे अपने विद्यार्थियों को ख्रिस्त का अनुसरण करना सिखा सकें। गुआम के महाधर्मदर्श श्रेयान जिमेनेज ने वैटिकन न्यूज से पोप लियो चौधरी के साथ अपनी मुलाकात और प्रशांत क्षेत्र में जीवन के संघर्षों और खुशियों के बारे में बात की। रविवार को जब उन्हें पालियो मिला तो महाधर्मदर्श ने बतलाया कि उन्हें पोप के साथ संक्षिप्त बातचीत करने का मौका मिला। पोप लियो ने उनसे कहा, आपके महाधर्म प्रांत में आपके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं।
संत पापा लियो 14वें ने शनिवार 5 जुलाई को वर्तमान में पालमकोट्टई के धर्माध्यक्ष अंतोनी सामी साबरीमुथु को मदुरई तमिलनाडु के नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति महाधर्माध्यक्ष अंतोनी पप्पू सामी के इस्तीफे के बाद हुई, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने 4 नवंबर 2024 को स्वीकार कर लिया था। नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष अंतोनी सामी साबरीमुथु का जन्म 8 दिसंबर 1960 को तमिलनाडु के तोतीकोरिन धर्म प्रांत के वडक्कू वंदनम में हुआ था। उन्होंने मदुरई में संत पीटर्स माइनर सेमिनरी में प्रवेश किया और बाद में बैंगलोर में संत पीटर्स पोंटिफिकल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें 26 अप्रैल 1987 को पलायमकोट्टई धर्म प्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया। फादर साबरीमुथु ने शुरुआत में पलायमकोट्टई के धर्माध्यक्ष के सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद वे मदुरई में संत पीटर्स माइनर सेमिनरी में प्रोफेसर बने। 1992 में उन्हें कैनन लो में उच्च अध्ययन करने के लिए फ्रांस भेजा गया, जहां उन्होंने कलीसिया संबंधी शिक्षा को आगे बढ़ाने में लगभग एक दशक बिताया। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 20 नवंबर 2019 को पलायमकोट्टई का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया और 15 दिसंबर 2019 को उनका धर्माध्यक्ष अभिषेक किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान याजकीय प्रशिक्षण को मजबूत करने, धर्म वैधानिक शिक्षा को बढ़ावा देने और स्पष्टता एवं करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी गहराई से सराहना की गई। 2024 से वे मदुरई के प्रेरितिक प्रशासक हैं। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को वाटिकन में अपने प्रांतीय सभा में भाग लेने आई येसु और मरियम के पौत्र हृदय की अगुस्टीनियन धर्म बहनों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका सहृदय स्वागत करते हुए कहा कि वे प्रांतीय सभा के अंत में उनसे मिलकर खुश हैं। प्रार्थना, विवेक और सामान्य योजना के इस सप्ताह में उन्होंने अपनी संस्थापिका ईश सेविका सिस्टर मरिया तेरेसा स्पिनेली के करिश्मे के प्रति अपनी निष्ठा को नवीनीकृत करने में सक्षम रही हैं। संत पापा ने कहा कि संस्थापिका ईश सेविका सिस्टर मरिया तेरेसा स्पिनेली के संत बनने की प्रक्रिया जारी है, अतः पवित्रता के लिए उनका मार्ग भी जारी है। संत पापा ने येसु और मरियम की सेविका अगुस्टीनियन धर्म बहनों के रूप में उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, आप हमेशा अपने नाम से खुद को नए सिरे से निर्देशित होने दें। वास्तव में आप जो सेवा हर दिन करती हैं, वह सबसे पहले आपके जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित करने में महसूस होती है और उनकी एवं हमारी माँ के प्रति सच्ची भक्ति में मजबूत होती है। संत पापा ने उन्हें ईश सेविका सिस्टर मरिया का अनुकरण करते हुए क्लेशों में धैर्य रखने हेतु प्रेरित किया। इतना कहने के बाद संत पापा ने येसु के नाम पर उन्हें और समुदायों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।